सीता महारानी के आदर भाव के उपलक्ष्य में हम सीता चरित्र का वर्णन करेंगे। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तो ये जो कथा है ये सुंदर कांड की है। जिस समय हनुमान जी ने सीता का दर्शन कर रहे हैं और छिप करके बैठे हैं वृक्ष के ऊपर, और सीता जी जो है कष्ट पा रही हैं राम की देह में, और हनुमान जी सोच रहे हैं कि कैसे अब सीता जी को विश्वास दिलाएं कि वे राम के भेजे हुए हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं कि सीता जी क्योंकि पहले रावण के द्वारा धोखा खा चुकी हैं, इसलिए भी अगर सीता जी के पास अचानक जाएंगे तो सीता जी भय से कहीं प्राण न त्याग दें। अब वे सोचते हैं कि वे अयोध्या के पास रहने वाले पिछड़े हुए लोगों की भाषा में बात करें, जिसे सुनकर के सीता जी को कुछ उनका दुख कुछ दूर होगा। तो इसमें लिखा है, इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। एवं विधाम चिंता चिंतित्वा महामति संत्रवे मधुरम वाक्यम वैदेह। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, इस वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा थे। वे अत्यंत कीर्तिमान महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। राजा दशरथो नाम रथ कुंजर बाजीमान पुण्य कीलो महाकीर्तिन एक साकुणाम महायशान। उन श्रेष्ठ नरेश में राजर्षियों के गुण थे, तपस्या में भी वे ऋषियों के समान थे। उनका जन्म चक्रवर्ती राजाओं के वंश में हुआ था। वे इंद्र के समान बलवान थे। राजर्षिणाम गुण श्रेष्ठम तपसा चरित्र भी चक्रवर्ती फुले जाता पुरंदर समूह बले। उनके बड़े पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लालने हैं, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले हैं, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। तस्य पुत्रा प्रियो जेष्ठं ताराधिपे नमः रामो नाम विशेषज्ञां श्रेष्ठा सर्व धनुष्मतां। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार की रक्षा करते हैं, अपने सज्जनों की रक्षा करते हैं और इस जगत की रक्षा करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। रक्षिता स्वच्छ वृत्तस्य सज्जनस्य अपि रक्षिता रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य च परम तपः। उनके पूरे पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर रघुनाथ अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। तो आपको पता है कौन कह रहा है ये सब बातें, हनुमान जी कह रहे हैं। कहाँ पर हैं? अशोक वाटिका में। और सीता जी सुन रही हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन बोल रहा है। सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए राम कथा सुना रहे हैं। सत्य सत्याभिसंधस्य वृद्धस्य वचनात्पितुः समार्या सहसा भ्रात्रा वीरा प्रम्रजितो वनम्। वहाँ विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षसों का वध किया। तेन तत्र महारण्ये मृग्यां बलिदावतां राक्षसा निहता सूरा बहवा काम रूपी महान। उनके द्वारा जन स्थान के विध्वंस और खर भूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने जनक मंदिर में सीता का अपहरण कर लिया। जनस्थान वधम श्रुत्वा नियतो करदूषणो ततस्तमर्ता पहरता जानकी रावण। पहले तो उस राक्षस ने माया से वृक्ष बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले गया। श्री राम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक बानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। अभी जो कथा है ये सीता जी को पता नहीं है। सीता जी का जब हरण हो गया तो उसके बाद फिर राम कहाँ गए और क्या किया सीता जी को पता नहीं है। तो हनुमान जी जो बता रहे हैं अब सीता जी को एक नया समाचार मिल रहा है और वो क्या समाचार है कि राम ने सीता जी को खोज करते करते मतंग वन में किससे मित्रता की है, सुग्रीव नामक मानव से मित्रता की है। वंते त्वामने रामं मृग रूपेण माया मार्ग मानस्तां देवी रामा सीतां अनिंदितां आस्तादय वने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं। इसके बाद श्री राम ने बाली का वध करके वानरों का राज्य सुग्रीव को दे दिया। यह सीता जी के लिए नया समाचार है कि राम ने क्या किया है, बाली को मारा है और सुग्रीव को राजा बनाया वानरों का। तथा समालिनम हत्वा रामा कर पुरंद्यम तो सुग्रीव आये महात्मने। इसके बाद वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। ये समाचार नया है सीता जी को मिला है? सब दिशाओं में वानर सीता जी को खोज रहे हैं। सुग्रीवणा सुग्रीवणा विनंदिता हरिया काम रूपिणा विश्वतनवासताम देवी विचिन्वंता सहस्र साम। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। कितना स्पष्ट बताया हनुमान जी ने सीता जी को विश्वास जलाने के लिए। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विदेह नंदिनी की खोज के लिए सौ योजन समुद्र को वेग पूर्वक लांग कर यहाँ आया हूँ। अहम संपाति वचना शत योजन मायतम सत्या हेतु विशालाख्या समुद्रम वेगवान कृता। मैं श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप जैसा रंग और जैसे लक्षण सुने थे उनके अनुरूप ही इन्हें पाया है। हनुमान जी ने कभी देखा नहीं सीता जी को देखा, लेकिन कितने बुद्धिमान हैं हनुमान जी, जैसा सुना है वैसा ही पाया। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता जी को मैंने वैसा ही पाया। सीता जी सुन रही हैं है? तो सीता जी को बड़ा आश्चर्य लग रहा है, कौन बोल रहा है, है? वो कह रहा है कि राम के मुख से जैसा मैंने सुना है रूप और जैसा रंग और जैसा लक्षण वैसा ही मैंने पाया है। इतना कहकर हनुमान जी चुप हो गए। अभी देखने के लिए कि सीता जी अब क्या सोचती हैं, क्या बोलती हैं, है ना, वो चुप हो गए। यथा रूपम यथा वर्णम यथा लक्ष्मणवती अस्तम राघवस्याहम नर पुंग। अब एक बड़ा आश्चर्य है, सीता देवी को कितने समय के बाद पहली बार राम की चर्चा सुनने को मिली और इतने मधुर शब्द में राम कथा सुनने को मिली। ये बातें सुनकर जनक ने सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केस घुंघराले बड़े सुंदर थे। सीता जी डरी हुई केसों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर अशुभ अशुभ वृक्ष की ओर देखने लगी। वो डर रही हैं और ऊपर की ओर देख रही हैं। जानकी चापित श्रुत्वा विस्मयं परमं गतां तथा सवक्र के शांता सुखे के समृतम उन्नम में वजनम भीरुं शिंसपामन देखत। बानर के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि पहली बार है कोई व्यक्ति जो है ना राम का भेजा हुआ यहाँ आया है, ऐसा जान करके बहुत प्रसन्नता हुई। वे श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में अब दृष्टि दौड़ाने लगी, जिसके पहले कभी भी देखती नहीं थी, किसी दिशा में नहीं देखी थी, या चारों दिशाओं में देख रही थी। ये सम्य सीता वचनम कपेस्तम स्वयं प्रहसं परमं जगामं सर्वात्मनारामं अनुस्मरन्ति। अब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है सीता जी को, कौन बोला आवाज कहाँ से आई, सीता जी चारों तरफ देख रही हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऊपर देखा, नीचे देखा, इधर देखा, उधर देखा, और अचिंत बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान को जो सुग्रीव के मंत्री थे, अब देखा तो कहते हैं सूर्य के समान उदय उदय होता हुआ सूर्य के समान दिखाई दिए हनुमान जी। सातिर्य गोर्धम तथा हृदस्थान निरीक्षमाण तम चिंत बुद्धिंगाधिपतेरमाद्यम वातात्मजम सूर्य में बोधयस्थम। अब सीता जी क्या सोचती हैं, हनुमान जी को देखा लेकिन पहले कभी नहीं देखा था है? और उनके साथ धोखा भी हुआ है, इसलिए सीता जी को आप देखो कैसा लगता है। अब देखा सीता जी ने शाखा के भीतर छिपे हैं और बिजली के समान अत्यंत पीले रंग के और श्वेत वस्त्रधारी सफेद कपड़े धारण किए हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी पर दृष्टि पड़ी तो उनका चित्त चंचल हो उठा, उन्होंने देखा कि फूले हुए अशोक के समान लाल कांति से प्रकाशित एक दिलीप और प्रियवादी बानर डालियों के बीच में बैठा है। बानर कैसा है, बहुत विनम्र है और बहुत मधुर बोलता है, वहां बैठा हुआ है। और नेत्र कैसे हैं, सोने के समान चमक रहे नेत्र। तथा साखांतरे लीनम दृश्वाचल मानसाम वे सितार्जुन वस्त्रम तम विद्युन संघाद चिंगनम सादर्श कपिम तत्र प्रकृतम प्रियवादिनम उल्लासोपोल कराभासम सत्यचामी करे क्षणम। अब सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दिलीप भाव से ये बानर बैठा हुआ है, तो मिथिलेश कुमारी को आश्चर्य हुआ और मन ही मन में सोचने लगी ऐसे बात भी नहीं कर सकती है, सोच रही है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है देख करके। साथ दृष्टा हरि कृष्ण विनीत मदवस्थितम मैथिली चिंतया मासे विस्मयम परमं गतां। क्या सोचती हैं, अहो ये बानर तो बड़ा भयंकर है, इसे पकड़ना बहुत कठिन है अगर पकड़ना चाहूँ इसको पकड़ नहीं सकती इसकी ओर तो देखने का भी साहस नहीं होता है ऐसा विचार करके भी भय से मूर्छित हो गई, बहुत डर गई। अहो भीमं इदं सत्वं वानरस्य दुरासदं दुर्निरीक्षमिदं मत्वा पुनरेव मोहितम्। भय से मोहित हुई सीता अत्यंत करुण स्वर में हा राम हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर विलाप करने लगी। विललापे वृषं सीतां करुणं भयमोहितां राम रामे की दुखाता लक्ष्मणे की चामिनी। कितने समय वनवास काल में राम और लक्ष्मण के साथ ही रही है, तो एक बानर को देख करके वो बहुत भयभीत हो गई। अब मंद स्वर में रोने लगी। इतने में उन्होंने देखा कि वो श्रेष्ठ वानर बड़ी विनय के साथ निकट आकर के बैठा है, बहुत विनम्रता पूर्वक और निकट आकर के बैठा हुआ है वो। तो मिथिलेश कुमार ने सोचा कि ये कोई स्वप्न है क्या, मैं सपना देख रही हूँ क्या। रोद सहता सीता मंद मंद चुरा सती सात दिवसा हरिवरम विनीत मधुपागतम मैथिली चिंतया मात्र सपनोयम इति भामिनी। अब उधर देखते ही उन्होंने सुग्रीव के आज्ञा पालक विशाल और टेढ़े मुख वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बानर प्रवर हनुमान जी को देखा। साधी क्षमा पृथ्वन वक्रम शाखा मृगेन्द्र यशोक्तकारिंगे प्रवरम महारहम वातात्मजम बुद्धिमताम वरिष्ठम। उन्हें देखकर सीताजी बहुत व्यथित होकर ऐसी दशा को पहुंच गईं मानो प्राण निकल गए हों। देखना भी चाहती हैं क्योंकि राम कथा सुना रहा है लेकिन देख नहीं पाती हैं। फिर बड़ी देर में चित होने पर विजय राजकुमारी ने अब विचार किया। बहुत देर में जब होश आया तो फिर विचार कर रही है कि क्या है, कि मैं क्या देख रही हूँ। सातम समय वृतम विपन्ना गता सुकलते बभूव सीता किरण संज्ञा प्रतिलंभ एवं विचिंतया मास विशाल नेत्र। वो सोच रहे हैं कि मैंने सपना देखा है। पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जाग रही है। सोच रहे हैं मैंने सपना देखा, ये तो बड़ा बुरा सपना देखा मैंने। सपने में बानर को देखना तो बड़ा खराब होता है। मेरी प्रार्थना है कि श्री राम लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो। सपनों मायम विचतो दिव्यता साका मृगा शास्त्र गणेर निषिद्धा स्वच्छ रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर में जन कस्य राज्ञः। लेकिन आप सोचती हैं कि सपना तो नहीं हो सकता है? ये सपना तो नहीं हो सकता क्योंकि शोक से पीड़ित होने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं है, ना तो मैं दिन में सोती हूँ ना रात में सोचती हूँ, तो सपना तो नहीं हो सकता ठीक है। मुझे तो उन पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले रघुनाथ से बिछुड़ जाने के कारण अब निद्रा का तो नाम ही नहीं है। स्वप्नो ही नायम नहीं मेरी निद्रा तो के न दुखे न चपीली सुखमी में नासी तो विहीना पूर्ण पति मान मेन। मैं सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करके वाणी के द्वारा राम नाम का ही उच्चारण करती हूँ, अतः उस विचार के अनुरूप जैसे अर्थ वाली ये कथा देख सुन रही हूँ। सोच रही है कि राम का नाम उच्चारण कर रही हूँ तो उसी कारण से मुझे कथा सुनाई दी है, मतलब मेरा भ्रम है ये। राम नाम के उच्चारण से ये कथा जो है ना मेरे कान में आ गई है तो राम नाम से ऐसा मुझे भ्रम पैदा हो गया है। ये सच्ची बात नहीं है कि जो मैंने कथा सुनी है, राम कथा जो सुनी है ये सत्य नहीं है, ये मेरा भ्रम है। राम नाम के कारण ये हो रहा है। रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा प्रभुति तमेव सत्यानुरूपं च कथां तदर्थां एवं प्रवक्ष्यामि तथा शृणोमि। तो सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही है, राम कथा मुझे ऐसे ही सुनाई दी है क्योंकि मेरा हृदय रघुनाथ में लगा है, अतः राम दर्शन की लालसा से पीड़ित होकर के उनका चिंतन करती हूँ, उनको देखती हूँ, इसलिए उनकी कथा सुनाई दी है मुझे। और कुछ नहीं, और कोई बोला नहीं है, मुझे सुनाई पड़ा है क्योंकि मैं राम का चिंतन करती हूँ इसलिए। अहम भी तक जानते मनोभावी संपीड़िता संगत सर्वभाव विचिंतयन्ति निततम तमेव तथैव पश्यामि तथा शृणोमि। और फिर सोचती है कि संभव है ये मेरे मन की कोई भावना हो, और बुद्धि भी तर्क वितर्क करती है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है इसका क्या कारण है, जो मुझे दिखाई दे रहा है इसका कारण क्या है। ये मन की भावना से दिखाई दे रहा है, लेकिन बानर तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और मुझसे बातचीत भी कर रहा है, फिर ये कैसे सपना हो सकता है या भ्रम कैसे हो सकता है। ये तो सच मालूम पड़ रहा है, वो सोचती सच तो नहीं होना चाहिए, इस सच जैसा ये मालूम पड़ रहा है। मनोरथा त्यागति चिंतयामी तथा बुद्ध्यापि वितर्कयामी, चिंतारणम तस्हिना सिरूपम सब्जेक्ट रूप से मदत्यम। क्योंकि तुम मुझसे बातें कर रहा है, अब मैं कहां तक सोचूं कि ये सपना है या भ्रम है, कि कैसे लगता तो वास्तविक है, तुम मुझसे मसीह से बातें कर रहा है। तो मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, इंद्र को, ब्रह्मा जी को और अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी बानर ने मेरे सामने जो कुछ कहा है वो सत्य ही हो जाए, प्रार्थना कर रही है कि सत्य हो जाए जो कुछ कहा है। क्या कहा है कि मैं सीता जी को खोजने के लिए आया हूँ राम की आज्ञा से, तो ये बात अगर सत्य हो तो कितना अच्छा होता है, अगर ये बात सच्ची होती। सीता जी सोच रही है अगर सच्ची सच्चा हो जाए कि सचमुच ये मुझे देखने के लिए आया है, खोजने के लिए आया है, तो कितना अच्छा होता। सीता जी सोच रही है, नमोस्तु वाचस्पतये सर्वज्ञने स्वयं भवे चैव हुतासनाय, अनेन चोक्तम् यदिदं मम मंगलो मनोगता तच्च तथा सुनाम्यताम्। अब हनुमान जी ने क्या किया, किस अवसर का लाभ उठाया, किस अवसर का, सीता जी को कुछ विश्वास हुआ, 1% विश्वास हुआ सीता जी को, तो हनुमान जी ने देर नहीं की, क्या किया, उनका लाल मुंह मूंगे के समान लाल मुंह है हनुमान जी का, अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनता पूर्वक निकट आकर प्रणाम किया सीता जी को। उनको लगा कुछ कुछ कि ये सच्चा हो सकता है, तो तुरंत प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा सीता जी से, गोवती ले प्रमा तस्मा विद्रुमा प्रतिमान नीते ले सहा कृपणा प्रणिपत्योपैत्रीन महातेजा हनुमान मारुतात्मज जंगली माधायन सीता मधुरया गिरा। अब हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी सीता जी ने कहते हैं, प्रफुल्ल कमल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, ये मलिन रेशमी तीस वस्त्र धारण किए आप कौन हैं? अभी पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जल के समान आपकी आंखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? तानु पद में पला साक्षी कृष्ण चौथे ये वासिनी द्रुमस्य शाखा मालम्बे तिष्ठति त्वं मनीषे किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारी श्रमती शोकजं पुंडरीके पनासाभ्यां विप्रकीर्णं विबोधकम्। हनुमान जी ने पहली बार बात की सीता जी से, अभी तक तो बोल रहे थे कि मैंने सीता जी को देखा है, जैसा राम ने बताया था वैसा ही रूप और गुण और रंग है सीता जी का, फिर आप पूछ रहे हैं तो परिचय पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। ये बात करने का तरीका है, गीता भगवान ने कहा अनुद्योग कर्म वाक्यम, उद्योग ना हो कोई व्यक्ति, ऐसी बात करो जिससे कोई उद्योग पैदा ना हो, तो प्रश्न कर रहे हैं आप कौन हो। शोभने आप देवता असुर नाग गंधर्व राक्षस यक्ष किन्नर रुद्र मरुद्गण अथवा वसुओं में से कौन हो, इनमें से किसकी कन्या हो या किसकी पत्नी हो, सुमुखी मुझे तो आप कोई देवता की जान पड़ती हो, असुराणाम असुराणाम चा नाग गंधर्व यक्षसाम यक्षाणाम किन्नराणाम चा तातम भवति शोभने तातम भवति रुद्राणाम मरुताम वरानमे वसूनाम वरारोहे देवता प्रतिभासिने।
आप क्या कह रहे हैं हनुमान जी? कई प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कौन हो है? तो क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी रोहिणी देवी हो क्या? चंद्रमा की पत्नी रोहिणी हो क्या?
किम चंद्रमा साहीना पतिता विबुधालया रोहिणी ज्योतिषाम त्रेष्ठा त्रेष्ठा सर्वे गुणाधिका।
अथवा चंद्रारी नेत्र मणि देवी, आप क्रोध से या मुंह से अपने पति वशिष्ठ को कुपित करके यहाँ आई हुई अरुंधति तो नहीं हो?
वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति हो।
गोपान वाहे दिवा मोहान भरतारम अतिथे क्षण
वशिष्ठम कोपये स्वातम वासी कल्याण अरुंधति।
आपका पुत्र पिता भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है जिसके लिए आप शोक कर रहे हो? शायद आपके पिता पति भाई पुत्र की किसी की मृत्यु हो गई होगी, किसी आप शोक कर रहे होंगे।
कौन पुत्र पिता भ्राता भरता माते सुमध्य में अस्मान लोका दमम लोकम कतम तम मनुष्योचसी।
लेकिन आपके पैर पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं इसलिए आप देवी तो नहीं हो, तो फिर क्या हो? आप मानुषी हो। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रहे हो और आपके लक्षण और चिन्ह भी राजाओं के दिखाई पड़ रहे हैं, इससे अनुमान होता है आप किसी राजा की महारानी हो, किसी राजा की कन्या हो।
रोदना प्रेम निश्वासा भूमि संपर्शनादी स्वाम देवी महम मन्ये राजा संज्ञा विधारणा जंजनानी हितेयानी लक्षणानी च लक्षणे मैत्री भूमि बालस्य राजकन्या च मे मता।
अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि रावण जन स्थान से जिन्हें हर लाया था वे सीता जी यदि आप हैं तो आपका कल्याण हो। अगर आप वही सीता जी हो तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ।
रावण ने जन स्थान बलात्मिथा सीता तमसे भद्रम ते तन्नमा तक्षोपृष्ठतः।
दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है, जैसा तपस्वी का देश है, इनके द्वारा जिससे ही आप रामचंद्र की महारानी जान पड़ती हो।
यथाहितं वैजन्यं रूपं चाप्यतिमानुषं तपसा चान्वितो वेषं सम्राम महति ध्रुवम्।
देखा कैसे बात की हनुमान जी ने हैं? सीता जी ने हनुमान जी की बात सुन करके राम चर्चा से बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और वृक्ष का सहारा लिए हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार अब बोली।
सातस्य वचनम श्रुत्वा राम कीर्तन हर सीता वाच्य वाच्यम देवी हनुमंतं द्रुमाकितम्।
अब सीता जी क्या कहती हैं? कपिवर जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी, जो शत्रुओं का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्रवधू हूँ। विदेहराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान श्री राम की धर्मपत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है।
पृथिव्याम राज सिंहानाम मुख्य विदितात्मन कृष्ण सादस रथ कृष्ण सादस रथ्याम शत्रु कौने प्रणाशिनः दुहिताजम कस्याहम् वैदेयस्य महात्मनः इति नाम्ना चोक्ताम् भार्या रामस्य धीमतः।
अयोध्या में श्री रघुनाथ के अंतःपुर में 12 वर्षों तक में सब प्रकार के भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रही।
समाजवाद से तत्म रागम से निवेशन भुंजाना मानुषाम भोगान सर्वताम समृद्धि।
इसके बाद 13वें वर्ष में विवाह के बाद 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ इच्छाकुल भूषण श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की।
तत्त्रयोदशे वर्षे राजे चेक्षाकु नंदनम अभिषेकयितुं राजा सोपाध्याया प्रचक्रमे।
जब वे रघुनाथ के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा।
तस्मिन् सम्भ्रमाणे तु राघवस्याभिषेकने कैकेयी नाम भरतारम् इदं वचनम् अब्रवीत।
इस प्रकार से सीता जी कथा सुना रही हैं तो मैं आगे चलना हूँ। सीता जी ने राम का वनवास बताया और फिर कहती हैं इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया जिसे पहले कभी नहीं देखा था।
देवयं भर बहुमान दृढ़ व्रता प्रविष्टास्मे पुरा दृष्टम वनम गंभीर दर्शनम।
वहाँ दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया है।
वसतो दंड कारण सत्याम अमितो रक्षता पेड़ता भार्या रावणे ने दुरात्मना।
उसने अनुग्रह पूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 महीने की अवधि निश्चित कर दी है। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा।
क्या कह रहे हैं सीता जी
हनुमान जी से कि रावण ने 2 महीने का समय दिया है इसलिए कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो यानी मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो क्या करूंगा तुम्हारा ब्रेकफास्ट कर लूंगा मैं। सीता जी का कलेवा कर लेगा वो। तो सीता जी कह रही मुझे प्राणों से परित्याग करना पड़ेगा।
दो मासो तेने में कालो जीवित अनुग्रह ऊर्धम द्वाभ्याम तुमाभ्याम सदस्यक्षामी जीवितम।
अब हनुमान जी शांत न देते हुए कहते हैं देवी मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। विदेह नंदिनी श्री रामचंद्र जी कुशल पूर्वक हैं उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है।
अहम रामस्य संदेशा देवी दूतं समागतः मैं देहि कुशली रामा सत्वां कौशलमब्रवीत।
आपके पति के अनुचर और प्रिय महातेजस्वी लक्ष्मण में भी शोक से संतप्त हो आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहा है।
लक्ष्मणश्च महातेजं भर्तृतेनोचन प्रिय कृतवान शोक संतप्ता तीर्था ते वादनम।
अब राम लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण शरीर में हर्ष का रोमांच हो गया और वे हनुमान जी से बोली।
सातयो कुशलम देवी निशम्य नरसिंह यो सरस्वती संग्रिष्ट सर्वांगी हनुमंतम धाम्रवी।
कितने दिनों के बाद समाचार मिला है और क्या समाचार मिला है कि कुशल पूर्वक है राम लक्ष्मण।
हाँ
तो क्या कहती हैं सीता जी, कहती हैं यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे 100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता ही है। ये कहावत आज मुझे बिल्कुल सत्य जान पड़ती है।
कल्याणी बटगाथेयम् लौकिकी प्रतिभाति मां जीवंत मानंदो नरंबर से सागती।
अब सीता और हनुमान के इस मिलाप से दोनों को अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। हनुमान जी भी बहुत चिंतित थे और दुखी थे सीता को ढूंढते ढूंढते, और यहाँ सीता जी बहुत चिंतित और दुखी थी और दोनों मिले तो दोनों को अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है। वे दोनों अब विस्तृत होकर एक दूसरे से बातें करने लगे।
तयो समागमे तस्मिन् प्रीतिरुत्पादितान्भुतान् परस्परेण चालापम् विश्वसौ।
तो संतप्त सीता की वे बातें सुनकर हनुमान जी उनसे उनके कुछ और निकट आ गए।
सत्यासन वचनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मज सीताया शोक तप्ताया समीपम उपचक्रम।
अब देखिए हनुमान जी सीता के समीप आए तो सीता को फिर शंका होने लगी कि रावण है क्या
यथा यथा समीपम सा हनुमान प्रदर्पति तथा तथा रावणम सा तम सीता परिसंसते।
ऐसा विचार आते ही ये मन ही मन कहने लगे अहो धिक्कार है जो इसके सामने मैंने अपने मन की बात कह दी कि तो रावण है।
सीता जी को फिर शंका हुई
इतना विश्वास होने के बाद फिर शंका हुई कि रावण है ये दूसरा रूप धारण करके आया हुआ रावण ही है।
अहो दिन कथितमे रूपांतरम उपागम सेवायम निरावल।
फिर तो निर्दोष अंग वाली सीता उस अशोक वृक्ष की शाखा को छोड़कर शोक से कातर होकर वहीं जमीन पर बैठ गई, खड़ी थी और बैठ गई।
ताम अशोक शाखा तो विमुक्ता कर सीता सत्यामेना वद्यांगी धरण्याम समुपादिशन।
अब हनुमान ने जनक नंदन सीता के चरणों में प्रणाम किया किंतु वे भयभीत होने के कारण अब देख नहीं सकती है और देख नहीं पाती सीता जी।
अवंगत महाबाहु सदस्तान जनकात्मज साक्षेनम भय संत्रस्ता भूयो नैनम देखत।
कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। तो रावण से धोखा मिला है सीता को, अब हनुमान पर भी वो विश्वास नहीं हो रहा है उनको। बानर हनुमान को बारंबार वंदना करते देख सीता लंबी सांस खींचकर उनके मधुर वाणी में बोली।
संदृष्ट्वा वंद्यमानं च सीता सती निभानं अब्रवीं दीर्घमुच्पत्र वानरं मधुरे सुनाम।
अब सीता क्या कहती है, यदि तुम स्वयं मायावी रावण हो और माया के शरीर में हम प्रवेश करके मुझे कष्ट दे रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है।
माया प्रविष्टो मायावी यदि तुम रावण स्वयं उत्पादयति मे भूया संतापम तन्न शोभनम।
जिसे मैंने जनस्थान में देखा था और जो अपने यथार्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण करके आया था तुम वही रावण हो।
सीता जी कह रहे हैं
पहले सन्यासी रूप धारण किया अब बड़ा रूप धारण किया है तुमसे।
तुम परित्यज्य रूपम या परिव्राज के रूप जनस्थान मया दृष्ट तुम सएव हे रावण।
इच्छानुसार रूप धारण करने वाले निशाचर
मैं उपवास करते करते दुबली हो गई हूँ और मन ही मन दुखी रहती हूँ। कितने पर भी जो तुम मुझे संताप दे रहे हो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। उपवास है कृतां दीनां काम रूपेण साचरन् संतापयति मां भूया संतापं तन्न शोभनम्। अथवा जिस बात की मेरे मन में शंका हो रही है वो ना भी हो क्योंकि तुम्हें देखने से मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो क्योंकि तुम्हें देख करके मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है। अथवा मैं तदेवम यन्मया परिसंकितम मनसो ही मम प्रीतिर उत्पन्ना तब दर्शना। बानर श्रेष्ठ सचमुच यदि तुम भगवान श्री राम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे उनकी बातें पूछती हूँ क्योंकि श्री राम की चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। यदि रामस्य दूतस्तुम आगतो भद्रमस्तुते पृच्छामि त्वं हरिश्रेष्ठ प्रिया राम कथाहिने। बानर मेरे प्रियतम श्री राम के गुणों का वर्णन करो। जैसे जल का वेग नदी के तट को तोड़ देता है उसी प्रकार तुम श्री राम की चर्चा से मेरे चित्त को सुना लेते हो। गुणान रामस्य कथय प्रियस्य मम बानर चित्तं हरते मे सौम्ये नदी कूलं निथारयः। अहो ये स्वप्न कैसा सुखदायी हुआ। पिताजी फिर सोचने के सपना मुझे बहुत अच्छा आया। जिससे यहाँ हर लाई गई मैं आज श्री राम के भेजे हुए दूत बानर को देख रही हूँ। ये सपने में मैं बानर को देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा सपना है। सपना सोच रही है। अहो स्वप्न से सफला यहाँ मैं प्रेतितम नाम पश्चान राघवेण वनो सका। यदि मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को तब न भी अगर देख लूं तो मुझे इतना कष्ट ना हो, परंतु स्वप्न भी तो मुझसे दूर रहता है। सपना भी तो मुझसे दूर रहता है, राम लक्ष्मण कहाँ दिखाई देंगे सपने में दूर। स्वप्नों की यदि हम वीरम राघवम च लक्ष्मणम पत्येयम नावती देयम स्वप्नों की हम मत्सरी। तो ये सपना नहीं है क्योंकि स्वप्न में बानर को देख लेने पर किसी का कल्याण नहीं होता है और मैंने यहाँ तो कल्याण प्राप्त किया है। नाहम स्वप्न मन स्वप्ने दृष्टवा ही बानर सत्यो हृदय प्राप्त अभ्युदय। अथवा ये मेरे चित्त का मोह हो सकता है, सपना नहीं है तो मेरे चित्त का भ्रम हो सकता है। लेकिन भ्रम नहीं है, उस मास का विकार तो नहीं उमड़ आया है। या मृत कृष्णा तो नहीं है, मृत कृष्णा मतलब जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी दिखाई पड़ता है। किन्नु क्या चित्त मोहोयम भवेन वाते गति स्वयं उन्माद जो विकारो वा कारयम मृग तृष्णिका। इस तरह सीता अनेक प्रकार से राक्षसों की प्रबलता और बानर की निर्बलता का निश्चय करके उन्हें राक्षस राज रावण ही समझने लगी कि रावण है ये, क्योंकि राक्षसों में एक संसार रूप धारण करने की शक्ति होती है। ऐसा विचार कर जनक कुमारी सीता ने हनुमान जी से फिर कुछ कहा नहीं। कभी विश्वास होता है और फिर शंका होती है, फिर विश्वास होता है फिर शंका होती है। इत्येवं बहुधा सीता संप्रधार्य बना बलम रक्षसाम काम रूपत्वा मेने तम राक्षसाधिपम एताम बुद्धिं तदा कृत्वा सीता का तनुमत्यम न प्रतिज्ञा जहारात है वानरम जनकात्मज। अब सीता के इस निश्चय को समझकर हनुमान जी ने उस समय कानों को सुख पहुंचाने वाले वचनों द्वारा उनका हर्ष बहाते हुए कहा। सीताया निश्चितं बुद्ध्वा हनुमान मारुतात्मकः श्रोत्रानुकूल वचन सदा ताम संत हर्षयन।
अब राम का गुणगान हनुमान करने लगे तो क्या कहते हैं, श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी हैं, चंद्रमा के समान कमनीय हैं, कुबेर के समान संपूर्ण जगत के राजा हैं।
आदित्य एव तेजस्वी लोक कांता सी यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रमणो यथा।
महायशस्वी भगवान विष्णु के समान पराक्रमी हैं और बृहस्पति के समान सत्यवादी और मधुरभाषी हैं।
विक्रमेण प्रपन्नस्ता यथा विष्णु महायता सत्यवादी मधुरवा देवो वाचस्पति यथा।
और रूपवान सौभाग्यशाली और कांतिमान कैसे हैं, कामदेव के समान हैं। क्रोध है कि पात्र पर ही प्रहार करते हैं, संसार के श्रेष्ठ महारथी हैं।
रूपवान सुभगा श्रीमान संदर्भे मूर्तिमान स्थान क्रोधे प्रहर काचा त्रेसे त्रेसो लोके महारथा।
संपूर्ण विश्व उनके भुजाओं के आश्रय में है। मृग रूपधारी निशाचर द्वारा रघुनाथ जी को आश्रम से दूर हटाकर जिसने शून्य आश्रम में पहुंचकर आपका अपहरण किया है उसे इस पाप का फल मिलने वाला है, उसको आप अपनी आंखों से देखोगी।
बाहुच्छायां नमस्तंभु यस्य लोको महात्मनः अपक्रम्याश्रम पदां मृग रूपेण राघवम पुण्ये येनाप नीतासि तत् द्रक्षसि तत्फलम्।
पराक्रमी श्री राम क्रोध पूर्वक छोड़े गए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा युद्ध में शीघ्र ही रावण का वध करेंगे।
अचिरां रावणं संघे यो वदिष्यति वीर्यवान् क्रोध है प्रमुक्तैर विश्ववीर जलंधीर पामकै।
मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत होकर यहाँ आपके पास आया हूँ। श्री राम आपके व्योग के दुख से पीड़ित हैं, उन्होंने आपके पास अपनी कुशल कहलाई है और आपकी भी कुशल पूछी है।
तेना हम प्रेषित हो दूतं सत्य का तम यहाँ गतः संदेयोगे दुखार्ता सत्वाम कौशलम ब्रवी।
सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु लक्ष्मण ने भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है।
लक्ष्मण महातेजा सुमित्रानंद वर्धन अभिवाद्य महाबाहु सत्वाम कौशल मंत्री।
देवी रघुनाथ जी के सखा एक सुग्रीव नामक बानर हैं जो मुख्य मुख्य बानरों के राजा हैं, उन्होंने भी आपसे कुशल पूछी है। सुग्रीव और लक्ष्मण से श्री राम प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं।
राम सीता सखा देवी सुग्रीव नाम बानर राजा वानर मुख्या नाम सताम कौशलम अब्रवी नित्यम स्मरति ते राम सुग्रीव लक्ष्मण।
विदेह नंदिनी राक्षसों के चंगुल में फंसकर भी आप अभी तक जीवित हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप शीघ्र ही महारथी श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करोगी।
दिव्या जीव शिवेही राक्षता राम रक्षते रामम लक्ष्मणम च महारथम।
साथ ही करोड़ों बाणरों से घिरे हुए सुग्रीव को भी आप देखोगी। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक बानर हूँ।
मध्य बानर कोटि नाम सुग्रीवं चामितौजसं अहम सुग्रीव सचिव हनुमान नाम बानर।
मैंने महासागर को लांघकर दुरात्मा रावण के सिर पर पैर रखकर लंकापुरी में प्रवेश किया है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, रावण के सिर में पैर रख करके मैं आया हूँ लंकापुरी में, आप चिंता मत करो।
प्रविष्टो नगरीं लंकां लंघयित्वा महोदधिं कृत्वा मूर्ध्नीं पद्मन्यासं रावणस्य दुरात्मनः।
मैं अपने पराक्रम का भरोसा करके आपका दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवी, आप मुझे जैसा समझ रही हैं मैं वैसा नहीं हूँ। आप ये विपरीत संकट छोड़ दीजिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
त्वां द्रष्टुम् अप्रयासोऽहम् समाकृत्य पराक्रमम् नाहमस्मि तथा देवी यथा माम् अवगच्छति विशङ्का त्यज्यतामेता श्रद्धस्व वदतो मम।
इस तरह से हमने कुछ सीता कथा सुनाई है, तो आगे फिर क्या होता है? सीता जी हनुमान जी पर विश्वास करते हैं और हनुमान जी सुझाव देते हैं कि आपकी अगर इच्छा है शीघ्र राम का दर्शन करने की, तो आप मेरी पीठ में बैठ जाओ और आपको बहुत जल्दी मैं राम के पास ले जाऊंगा। तो फिर सीता जी कई कारण बताती हैं कि वो ऐसे नहीं जा सकती हैं। एक कारण तो ये बताती हैं कि किसी पुरुष के शरीर का स्पर्श करना उनके लिए उचित नहीं है। रावण के शरीर का स्पर्श हुआ, ये तो वो विवश थी, तो हनुमान जी की पीठ पर नहीं बैठ सकती। दूसरा कारण ये भी बताती हैं कि पीठ पर बैठ करके अगर वो जाएंगी तो समुद्र में जो ना बहुत तेजी से जाने के कारण हो सकता है कि पीठ से गिर जाए, हनुमान जी की पीठ से गिर जाए, समुद्र में गिर जाए, है ना, ये भी बताती हैं। और ये भी कुछ आशंका बताती हैं कि अगर हनुमान जी जाएंगे सीता जी को पीठ में लेकर के, तो राक्षस लोग जो है युद्ध करेंगे और युद्ध के समय भी जो है ना सीता जी हनुमान जी की पीठ से गिर सकती हैं। तो ऐसे कई कारण बताती हैं। और एक कारण ये भी बताती हैं कि ज्यादा उचित यही है कि राम स्वयं रावण का वध करके यहाँ आकर के मुझे यहाँ से ले जाए, सबसे अच्छा यही है, है? सबसे उचित यही है कि राम स्वयं यहाँ आकर के रावण को मार करके और मुझे ले जाए, यही उनके पुरुषार्थ के अनुसार उचित होगा राम के लिए। इस तरह से सीता जी कारण बताती हैं और हनुमान जी फिर सीता जी की प्रशंसा करते हैं कि ऐसे जो जो विचार हैं ये आपके सिवा और किसमें हो सकते हैं, है ना। इसके बाद फिर सीता जी एक घटना सुनाती हैं हनुमान जी को, जिस घटना से राम विश्वास करेंगे हनुमान पर कि हाँ वो सीता से मिले। राम सीता जी वो घटना सुनाती हैं जो घटना और कोई नहीं जानता राम के सिवा। जब राम के साथ अकेली थी और इंद्र का पुत्र देव सब को रूप धारण करके सीता जी का अपराध करता है, उनके शरीर में चोंच से प्रहार करता है, उस समय राम जो है एक किल का चला करके उसको ब्रह्मास्त्र बना देते हैं और उस वो ब्रह्मास्त्र उस कौवे का पीछा करता है। बाद में कौवे ने राम की शरण ली और राम ने फिर उस कौवे की एक आंख छोड़ करके और उसको जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार से फिर हनुमान जी जो है जब जाने की तैयारी करते हैं, राम के पास जाना चाहते हैं, तो सोचते हैं कुछ दंड दे करके जाऊंगा, यहाँ पर इन राक्षसों को कुछ दंड दे करके जरूर जाऊंगा। तो फिर उन्होंने जो है आकाश में बहुत तेजी से घूमना शुरू किया, अशोक वन को जाड़ा डाला और राक्षसियों को भी जो है बहुत डांटा, और फिर रावण के जो है 80,000 सैनिक आए उनका वध कर दिया। उसके बाद फिर अक्ष कुमार आया उसका वध कर दिया। इसके बाद फिर इंद्रजीत आया, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांधा, तो ब्रह्मास्त्र से वो भी मुक्त थे हनुमान जी, उनको वरदान था, लेकिन तो भी जान बुझ करके बन गए ब्रह्मास्त्र से, है ना। और फिर जो है रावण के दरबार में रावण को समझाया, अच्छी तरह से समझाया कि तुम अब अपना कुशल चाहते तो राम की शरण ले लो, लेकिन फिर रावण ने आदेश दिया आपने सैनिकों को कि शब्द करो बानर का। लेकिन फिर बाद में शायद प्रहस ने सुझाव दिया कि दूध का जो है ना अंग भंग कर देना चाहिए, तो पूछ में आग लगा देना चाहिए। तो हनुमान जी की पूछ में आग लगाई। यहाँ सीता जी को समाचार दिया राक्षसियों ने कि वो बानर जो तुमसे बातचीत करके गया है तो उसको उसकी पूछ में आग लगाई जा रही है। तो सीता जी ने फिर अग्नि देव से प्रार्थना की कि अगर मैं राम के सिवा और किसी पुरुष में मन नहीं लगाया मैंने तो हनुमान के लिए अग्नि ही शीतल हो जाए। इस तरह से हनुमान जी को जो ना अब अग्नि शीतल लग रही है तो विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अगर शीतल लग रही है अग्नि, मुझे आग गर्म नहीं लग रही है, तो फिर अच्छा हो कि मैं पूरी लंका को भी शीतल कर दूं। तो फिर उन्होंने लंका में जो है ना आग लगाना शुरू किया और बड़े बड़े राक्षसों का भी वध किया और पूरी लंका में आग लगा दी। इसके बाद फिर समुद्र में जाके पूछ बुझाई। फिर उनको शंका हुई कि शायद सीता जी तो नहीं जल गई, मैंने बहुत बड़ा ये अनुचित कार्य किया है, क्योंकि पूरी लंका में आग लगाई है, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहाँ आग नहीं लगाई हो। तो सीता जी तो भागने वाली नहीं है अपनी रक्षा के लिए, तो सीता जी अवश्य जल गई होंगी। तो फिर बाद में वहां उस स्थान में जब आए तो देखा कि सीता जी सुरक्षित हैं, तो सीता जी से मिले, उनको प्रणाम किया, तो सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से फिर हनुमान जी वापस जाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि भगवान रामचंद्र जी ने बाली को क्यों मारा और सुग्रीव को राजा क्यों बनाया? सुग्रीव ने राम को पूरी घटना बतलाई कि बाली ने कैसे अत्याचार किया था। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था, लेकिन उसने सुग्रीव की पत्नी छीन ली और सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया। और इतना ही नहीं, सुग्रीव को मार डालने के लिए बाली ने कई बार योजनाएं बनाई। सुग्रीव ऐसे स्थान पर थे जहाँ बाली को साफ था कि बाली अगर आएगा तो मर जाएगा। मतंग मुनि ने श्राप दिया था बाली को, तो बाली नहीं आ सकता था। लेकिन सुग्रीव को मार डालने के लिए वो कई बार जो है ना बड़े बड़े जो योद्धा बानर थे उनको भेजता था। तो सुग्रीव जो है अपनी जान बचाते थे किसी प्रकार से छिप करके उस स्थान में। और सुग्रीव बहुत भयभीत थे बाली के चेष्टाओं से। तो फिर भगवान राम ने विचार किया कि बाली को मृत्यु दंड देना उचित है। बाली ने जब प्रश्न किया कि आपने क्यों मुझे मारा है ना, तो भगवान राम ने कहा कि तुमको जो है उपकार मानना चाहिए कि तुमको दंड देकर कि मैंने तुमको उस पाप से छुड़ाया है जो तुमने पाप किया। इस तरह से राम ने बहुत विस्तार से बाली के साथ चर्चा की है कि उन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया बाली को मार करके। बाली को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। तो कई बार राजा को मृत्युदंड देना जरूरी होता है उसको नरक से छुड़ाने के लिए। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि हनुमान जी मुद्रिका लेकर के जाते हैं। हाँ, तो भगवान राम की मुद्रिका लेकर के सीता जी के पास आए हैं हनुमान जी। ये आगे चलकर काफी विस्तार से ये सब कथा है। सीता जी को राम की मुद्रिका दी हनुमान जी ने, और सीता जी ने हनुमान जी को अपनी उत्तम पहचान के रूप में एक घटना सुनाई जिसमें चित्रकूट धाम में एक कौवे ने सीता जी को चोंच मारी थी तथा श्री राम ने उसे भयानक दंड दिया था। बाद में सीता जी ने राम को देने के लिए हनुमान जी को एक दिव्य चूड़ामणि दी। जब सीता जी हनुमान जी को रावण समझने लगी, रावण समझने लगी, तो फिर कैसे विश्वास हुआ सीता जी को कि हनुमान जी जो राम के दूत हैं? कैसे विश्वास हुआ? हनुमान जी ने क्या किया? सीता जी के अंदर प्रसन्नता हो रही थी तो उनको विश्वास हो रहा था, लेकिन फिर शंका होती थी बार बार। सीता जी के मन में प्रसन्नता भी होती थी, फिर से शंका होती है, फिर विश्वास होता है, फिर शंका होती है सीता जी को, तो फिर विश्वास पूरा विश्वास कैसे हुआ सीता जी को? है नहीं नहीं, सीता जी को कैसे विश्वास हुआ हनुमान जी पर? जब राम के गुणों का वर्णन किया
और वे सभी घटनाएं सुनाई कि वे कैसे सुग्रीव से मिले, सुग्रीव के साथ कैसे उनकी मित्रता का संबंध जुड़ा,
राम के जो है रूप का वर्णन किया, उनके शरीर के लक्षणों का वर्णन किया सीता जी के सामने, है ना, शरीर के एक एक अंग का जो है वर्णन किया है, शारीरिक चिन्हों का वर्णन किया है ना, फिर सीता जी के मन में फिर विश्वास हुआ। काफी देर में सीता जी को विश्वास हुआ हनुमान जी पर। और कोई प्रश्न किसी का?
हाँ, तो इनका प्रश्न है कि हनुमान जी ने सीता जी को क्या क्या बातें बतलाई?
बहुत लंबी जो है ना कथा सुनाई हनुमान जी ने, राम का जो है कैसे सुग्रीव से मिलन हुआ और फिर कैसे मित्रता हुई और सुग्रीव का भी जो है क्या कष्ट था, हनुमान जी ने सब विस्तार पूर्वक सुनाया सीता जी को। तो सीता जी जब से राम से बिछड़ी थी तब से उनको राम का कोई समाचार नहीं मिला था। इस तरह से फिर सीता जी ये भी कहती हैं कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में दूं, है ना सीता जी। हाँ, जब हनुमान जी बाद में रावण के वध का समाचार सुनाते हैं सीता जी को, हाँ, तब सीता जी कहते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे सकूं। पूरा तीनों लोगों का राज्य भी जो है ना इसके बराबर नहीं है, जो तुमने समाचार मुझे दिया है उसके बराबर तीनों लोगों का राज्य भी नहीं हो सकता। तब हनुमान जी कहते हैं कि ये जो आपके वचन है जो आपने मुझसे कहे हैं ये मुझे पुरस्कार मिल गया, जो आपने मुझसे इतने मधुर वचन बोले हैं तो इस प्रकार से मुझे पुरस्कार मिल गया जो मैंने आपको संदेश दिया था।
और हनुमान जी ने सीता जी के वचनों की सराहना की कि ऐसे स्नेहपूर्ण वचन सीता जी के ही मुख से निकल सकते हैं, ये वचन देवताओं के राज्य से भी बढ़कर हैं। अब सीता जी को
बहुत चिंता होती है, हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी कहती हैं कि तुम्हारी सेवा और कोई व्यक्ति समुद्र पार कर नहीं सकता है, या तो तुम समुद्र पार कर सकते हो या गरुड़ जी समुद्र पार कर सकते हैं, फिर कैसे राम आएंगे यहाँ पर, कैसे मेरा उद्धार करेंगे। तो समय तक हनुमान जी की भी मन में वो विचार नहीं आया था कि फूल बनेगा। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मैं राम लक्ष्मण को अपने पेट में धारण करके यहाँ ले आऊंगा, और इस तरह से मुख्य मुख्य जो वानर हैं उनको मैं लाऊंगा और युद्ध करवाऊंगा। इस तरह सीता जी को विश्वास दिलाते हैं। बाद में फिर जो पुल का निर्माण हुआ ये तो अत्यंत कार्य था, कोई सोच नहीं सकता कि पुल बन सकता है। जय
श्री श्री राधा पार्षार्थी भगवान की, श्री श्री गौंडताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रीमती सीता महारानी की, ग्रंथराज श्रीमन वाल्मीकि रामायण की। धन्यवाद। हरे कृष्णा।